आनट वर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में कृष्ण बड़े हैं 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 जय सितारों में चंदा भजुर मन गोविंदा हाँ नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है 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 जैसे नदियों में गंगा भजुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा हाँ श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा हे कर सर पर धर अमर कर अनुसर कर परवर धर मेल करे हर हर सुर यवर य पर यन कर नटवर मन हर भैर बन हर मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर कवर न में घन रण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम हे तब डम तमक नादुर तब डमकत बहकत मोर मलाल गिरा तव पियु पियु शब्द पुकारत जात पियु को किल कान गिरा तव गड़ गड़ नभोत कड़ा कान घन नन गिरिवर शिखर बजे हन रण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर हे ब्रिज की सब बाला रूप रसाला ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला लागी तन ज्वाला विपत्ति काला दिन दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसीवाला बनवारी नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी गिरधारी रे जीजी गए विसारी गिरधारी रे जीजी गए विसारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय జయ జయ జగన్నా జగన్నా బలదేవ సుభద్రా జయ గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ గౌరనితాయ జయ గౌరనితాయ జయ 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 ప్రభుపాద 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 ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की हिताय गौर करवाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजी साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिष्टि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार पीतांबर दारुण बिंब फल धरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्वहं न जाने। ప్రసన్నాత్మయా గతాభిషేకత తథా మమలే వనవాస దుఃఖత ముఖాంబుజ శ్రీ రఘునందనస్య మే సదాస్తు సామన్ జుమంగళప్రదా నీలాంబుజ శ్యామలకోమలాంగం సీతాసమారోపితవామ భాగం పాణో మహాశాయతచారుచాపం నమామి రామం రఘువంశనాథం నమామి రామం రఘువంశనాథం నమామి రామం రఘువంశనాథం
ఆప్ సబ్ భక్తో కా అంతర్రాష్ట్రీయ కృష్ణ భావనామృత సంఘ కి ఓర్ సే ప్రస్థాపిత प्रति शुक्रवार ये इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रति शुक्रवार को हम भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करते हैं। भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करने से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जमगन मूह मसी जग जमुनासी जमगन मूह मसी जग जमुनासी जीवन मुकुति हे नुज तुकासी जमगन मूह मसी जग जमुनासी। भगवान की कथा का यदि कोई श्रवण करते हैं तो उनके जीवन में जैसे यमुना में स्नान करके फल प्राप्त होता है, उतना ही फल भगवान की कथा सुनकर प्राप्त होता है। जमुना से, जमुना में स्नान करने से, जैसे जमुना में स्नान करने से कभी यमदूत का दर्शन नहीं करना पड़ता है। पद्म पुराण में यह कथा है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन, हम जिसे भाई बीज कहते हैं, भाई बीज के दिन यदि कोई अपनी बहन के साथ यमुना में विश्राम घाट में स्नान करता है तो उसे यमराज का दर्शन नहीं होता है, उसे यमराज नरक में नहीं लेकर जाते हैं। इसके पीछे एक कथा है, सूर्य देव के दो संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री, और दोनों जुड़वा संतान थे। जुड़वा संतान होने के कारण दोनों का नाम यम से शुरू हुआ। यम का अर्थ होता है जुड़वा, जोड़ा, ट्विन्स। तो एक पुत्र और एक पुत्री, पुत्र का नाम यमराज हुआ और पुत्री का नाम यमुना हुआ। यमराज जी और यमुना महारानी ये दोनों सगे भाई बहन है। तो एक दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को कार्तिक की द्वितीय शुक्ला के दिन अपने घर पर निमंत्रण दिया। यमराज जी गए यमुना के वहां, और यमुना के वहां जाकर यमराज जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर भोजन बनाकर रखे थे। यमुना जी ने सुंदर सुंदर भोजन व्यंजन खाए और प्रसाद देने के बाद यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए अपनी बहन के ऊपर। तो यमराज जी ने अपनी बहन से कहा कि बहना, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तो सर्वभूत सुहृद साधु सभी जीवों के प्रति हित रखने वाली महारानी यमुना, वास्तव में यमुना जी सभी जीवों के प्रति सुहृद है। कभी कभी प्रश्न भी उठता है कि नदी तो कई सारी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा और यमुना, इनमें से महान कौन है? एक बार राजा अकबर की सभा में प्रश्न उठा, गंगा नदी महान है या यमुना महान है? गंगा और यमुना में दोनों में से महान कौन है? तो बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले बड़े बड़े ब्राह्मण उस सभा में बैठे थे, परंतु यह नहीं पता चला पाए कि यमुना और गंगा में से महान कौन है। तब राजा ने थोड़ा कम कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तब राजा ने यह जानने के लिए कि गंगा महान है या यमुना, उस वक्त हमारे वृंदावन में हमारे 6 गोस्वामियों में से जीव गोस्वामी वहां पर रह रहे थे। जीव गोस्वामी, राजा ने जीव गोस्वामी को बुलाने के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की, क्योंकि जीव गोस्वामी एक रात दूसरे के वहां नहीं रहते थे। जीव गोस्वामी को बुलाया गया राजा के द्वारा। जीव गोस्वामी उस सभा में गए और सभा में प्रश्न पूछा, यमुना बड़ी है कि गंगा बड़ी है? तो जीव गोस्वामी ने सबसे पहले गंगा नदी की बहुत प्रशंसा की। गंगा जो भगवान के चरणों से बहती है, गंगा जो त्रिभुवन को पावन करने वाली है, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, ये पृथ्वी लोक और पाताल में भी गंगा सबको पावन करती है, और यहाँ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जितने भी लोग गंगा में स्नान करते हैं सब लोग उस पापों से मुक्त हो जाते हैं। बहुत बहुत गंगा की महिमा गाई, परंतु अंत में इतना ही कहा कि गंगा तो भगवान के चरणों से निकलती है, परंतु यमुना के बारे में क्या बताए, यमुना तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। इतने शब्दों में उत्तर दे दिया, जीव गोस्वामी चले गए, परंतु यह प्रूढ़ हुआ कि यमुना जी महान है। तो वही यमुना अपने भाई यमराज जी को अपने घर पर बुलाकर बहुत ही सुंदर सेवा, यमराज जी प्रसन्न हुए और कहे, बहना जो चाहिए वो मांग लो, सभी जीवों के प्रति कृपालु होने के कारण यमुना जी ने कहा कि भैया, यमुना जी अपने भाई के प्रताप को जानती थी, ये यमराज जी नरक में बहुत पीटते हैं, जो लोग इस संसार में पाप करते हैं उसकी बहुत पिटाई होती है नरक में। श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद के अंत में वर्णन है, 28 प्रकार के नरक का वर्णन है, बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। उसका सैंपल, छोटा सा सैंपल हमारी यह सेंट्रल जेल है, परंतु ये बहुत छोटा सा सैंपल है, इससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सजा नरक नाम की जेल में दी जाती है। इसलिए जो लोग भजन नहीं करते हैं वो मार खाने के लिए तैयार रहिए। यमराज यमुना जी ने सोचा कि ये भाई, मेरा भैया बहुत लोगों को परेशान करता है, तो कहा, भैया यदि आपको देना ही है तो एक काम करो, इस कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मेरी नदी में, यमुना में जो स्नान करे वह कभी नरक में न जाए, ऐसा वरदान दो। यमराज जी ने कहा, तो हमारा डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, कारखाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यमुनोत्री से लेकर दिल्ली होकर कहां कहां तक यमुना जी बढ़ती है, तीर्थराज प्रयाग तक यमुना जी बहती है। तो यमराज जी ने कहा, थोड़ा कुछ कंसीडर कर दो, इतना बड़ा हिस्से में आप। यमुना जी ने कहा, ठीक है, तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यदि कोई विश्राम घाट पर, ये विश्राम घाट क्या है पहले ये जानना होगा, भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक वृंदावन में रहे और बाद में मथुरा में आए, मथुरा में आकर कुबलिया पीठ हाथी का वध किया, महावध का वध किया, चारुण मुष्टि का वध किया और अंत में अपने मामा कंस का वध किया, ये सब का एक ही दिन में वध किया, तो भगवान थोड़े थके हुए से थे, इसलिए भगवान ने उसी मथुरा में यमुना नदी में आकर स्नान किया और स्नान करके उस यमुना नदी के किनारे विश्राम किया। उस दिन से उस घाट का नाम विश्राम घाट है। तो उस विश्राम घाट पर यदि कोई कार्तिक द्वितीय शुक्ला के दिन कोई स्नान करे तो उसे आप नरक में नहीं लेकर जाओगे। यमराज ने कह दिया डन, ठीक है। इसलिए आज भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन हजारों हजारों लोग भाई और बहन दोनों साथ में मिलकर इस यमुना में स्नान करते हैं। हमने भी 2 साल पहले किया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं जैसे यमुना में स्नान करके नरक में जाने से व्यक्ति बच सकता है, वैसे भगवान श्री राम भगवान श्री कथा कृष्ण की कथा रूपी गंगा में स्नान करके व्यक्ति नरक में जाने से बच सकता है। और इतना ही नहीं, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, और वो व्यक्ति मृत्यु के बाद ऐसे मुक्त हो जाएगा जैसे काशी में मृत्यु के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाता है। काशी के प्रभाव को जानते हैं, काशी में काशी क्षेत्र जो है भगवान शिव का क्षेत्र है। तो भगवान शिव काशी में जो भी व्यक्ति मरता है अंत समय में भगवान शिव उसके कान में राम नाम बोल देते हैं। और अंत काले च मामेव स्मरण उत्वा कलेवरम। और भगवान ने गीता में कहा है जीवन में जो कुछ भी किया हो अंत में यदि मेरा नाम सुना है, मेरा नाम लिया है, मेरा नाम स्मरण होता है तो वो मेरे धाम में आता है, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए लोग मरने के लिए काशी जाते हैं। तो अंत काले च मामे वो शिव जी उनके कान में भगवान श्री रामचंद्र का नाम बोल देते हैं और मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनने वाले वैसे मुक्त हो जाते हैं जैसे काशी में मरने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। परंतु भक्त भी अपनी अद्भुत बुद्धि लगाते हैं। इस पर विचार किया जाए तो काशी में मरने से मरने के बाद मुक्त तो हुआ जाता है, परंतु भगवान की कथा सुनकर जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। रहता है अपने घर पर, रहता है अपनी ऑफिस में, काम करता है धंधा बिजनेस, परंतु अंदर से भगवान के भजन में नित्य लगा रहता है। संसार के ऐश्वर्य से, संसार के भोगों से बिल्कुल मुक्त रहता है। तो ये भगवान की कथा की महिमा है। भगवान की कथा यदि कोई सुनता है तो वास्तव में वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। मुक्त का भी बहुत अर्थ है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार की विषयाशक्ति से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार से झमेले से व्यक्ति मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। भजन करने वाले, आपने देखा होगा भजन करने वाले के मुख के ऊपर अद्भुत तेज होता है, क्योंकि वास्तव में वो शांत होते हैं, उसे टेंशन नहीं होता है दुनिया का। और समाज में हम देखते हैं घर पे केवल 2 बच्चे हैं, 1 बीबी है, परंतु उसके मुख को देखकर लगेगा पूरी भारत का टेंशन इसी को है, पूरे भारत का वैवट यही लेकर घूम रहा है, बस ऐसे ही लगता है, होता कुछ नहीं है परंतु बहुत बहुत झमेला। परंतु यदि कोई भगवान की कथा सुनता है तो यह सभी झमेले से मुक्त हो जाता है। तो आज हमें उसी भगवान श्री रामचंद्र की लीला श्रवण कराने की इच्छा हुई है। भगवान की लीला अद्भुत है, अनेक अनेक भगवान की लीला है, परंतु भगवान जो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं तो उसमें भी अद्भुत है। भगवान अकेले तो लीला करते ही हैं, परंतु भक्त जब भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो उस लीला में और भी आनंद आता है। ऐसा ही एक भक्त शीर सागर में भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर लेटे होते हैं और लक्ष्मी जी नित्य उनके चरण दबाती रहती हैं। उस शीर सागर से एक कछुआ बाहर आया और भगवान के चरण को स्पर्श करना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी ने स्पर्श नहीं करने दिया। उस कछुए ने बहुत बहुत प्रयास किया कि भगवान के चरण को स्पर्श करूं, परंतु लक्ष्मी जी स्पर्श नहीं कर पाई। अंत में कछुए ने सोचा ठीक है, यहां पर तो मुझे ऑफिस में स्पर्श नहीं करने देते हैं, परंतु जब अवतार लेंगे तब देख लेंगे। वही शीर सागर का कछुआ त्रेता युग में केवट नाम का भक्त बना, और वही भगवान श्री विष्णु त्रेता युग में यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। इस संसार में जब जब असुरों की संख्या बढ़ती है तब असुरों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और साधु और भक्त जनों को आनंद देने के लिए भगवान युग युग में इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो इस युग युग में अवतरित होने के क्रम में त्रेता युग में भगवान विष्णु रामचंद्र के रूप में आए थे। बहुत ही सुंदर जन्म की लीला है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र जन्म लिए। जन्म लेकर कुछ सालों के बाद विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ में कुछ असुर विविधा दुविधा बाधा देते थे। उस असुरों का वध किया, जनकपुर में गए तो सीता जी के साथ विवाह किया। विवाह करके घर पर आए, कुछ साल तक घर पर रहे। राजा दशरथ ने सोचा कि राम को राजा बनाना चाहिए, परंतु मंत्रा के द्वारा कैके के कान भरे गए और कैके ने राजा दशरथ को एक दिन कह दिया कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को वन में भेजो और वो भी तपस्वियों के वेश में, राज वेश में नहीं। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या पुरी से निकल गए। साथ में लखनलाल और सीता मैया भी निकली है। दशरथ जी ने सुमंत्र जी को भेजा था कि जाओ इसे कुछ देर आगे घुमाकर वापस घर पर ले आना। सुमन जी राम लक्ष्मण और सीता को लेकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे, वहां पर एक रात रुके और सुबह उठकर भगवान ने सुमंत्र जी को वापस भेज दिया और भगवान श्री रामचंद्र वहां से अपनी आगे लीला करते हुए जा रहे थे। तो जाते जाते बीच में गंगा नदी पड़ी, तो भगवान श्री रामचंद्र लखनलाल और सीता मैया ये तीनों गंगा के तट पर खड़े थे और गंगा को पार करना था, इसलिए देख रहे थे यहां कोई नाविक या नाव है तो जिस किसके ऊपर सवार होकर हम पार हो जाए। तो भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि बीच गंगा में एक व्यक्ति अपनी नाव के ऊपर बैठा है और ढूंढ रहा है यात्री कब यहां पर आए। तो भगवान ने दूर से उस नाविक को कहा, मां की नाव न केवट आना। भगवान श्री रामचंद्र ने उस केवट को कहा, उस नाविक का नाम केवट था, कि हे केवट यहां पर आओ, हमें उस पार जाना है। तो पहले तो केवट ने भगवान के सामने देखा भी नहीं। भगवान ने जब बहुत बहुत बुलाया कि यहां पर आओ जरा, तुम्हारी जरूरत है, हमें उस पार जाना है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मर्म में जाना। केवट ने कहा दूर से ही कि प्रभु मैं नहीं आऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र ने पूछा क्यों नहीं आओगे। केवट ने दूर से कहा कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, तुम्हारे प्रभाव को मैं जानता हूं, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा ऐसा क्या प्रभाव मेरा है। केवट ने कहा चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मुरी कछु कही। मैं नहीं, दुनिया के सब लोग कहते हैं कि आप पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु आप में कुछ तकलीफ नहीं है, आपके शरीर में भी कुछ तकलीफ नहीं है, आपके चरण में भी कुछ तकलीफ नहीं है, पर चरण के नीचे जो धूल लगी हुई है उसमें बहुत गड़बड़ है। और ये मैं नहीं कहता हूं, सब कही है, संसार के लोग इस प्रकार से कहते हैं कि आपकी चरण में कुछ गड़बड़ है, धूल में कुछ गड़बड़ है, मैंने सुना है आपकी धूल मूरी जड़ी बूटी के समान है। भगवान ने कहा क्या हो गया, जड़ी बूटी है तो है, केवट ने कहा, क्या हो गया? मैंने सुना है छुअत सिला भय नारी सुहाई, आपके चरण की धूल। मैंने सुना कि आप जब विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा को मिटाकर जब आगे आ रहे थे जनकपुर, तो एक पत्थर की शिला थी और उस पत्थर की शिला पर आपके चरण की रज स्पर्श हो गई तो वह शिला नारी बन गई। तो छुअत शिला भय नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तो प्रभु आपकी चरण की रज से एक पत्थर नारी बन गई तो मेरी यह नाव तो काठ की लकड़ी की बनी हुई है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, ये तो नारी बन ही जाएगी। और प्रभु एक तो एक नारी को लेकर इतना दुखी हूं, फिर दो दो नारी हो जाएगी, क्या करूंगा प्रभु? एक कोई संभालने में दम निकल जाता है, फैन निकल जाता है, इसलिए पावर कहा गया है इस संसार को। वास्तव में मनुष्य यदि विवाह न करता, और तो विवाह करने वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक जीवन में एक चीज नहीं की होती तो कितना स्वतंत्र होता, क्यों मनुष्य प्रभु? केवट जी कह रहे हैं, एक तो लेकर घूम रहा हूं, ढोकर चल रहा हूं, और दूसरी यदि नारी बन गई तो दोनों को कैसे रखूंगा? तरनीय मुनि धरनी हो जाए, और नारी बने कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु मुनि की नारी बनेगी, भक्त बनेगी, और भक्त जो होती है पत्नी तो घर का काम ठीक से नहीं करती है। मुनि की नारी बनेगी और बाट परई मोई नाव उड़ाई। और मैं क्या बताऊं प्रभु, ये लकड़े की पत्थर की पत्थर को आपने स्त्री बना दिया, ये लकड़े की नाव को छूते ही ये स्त्री बन जाएगी। और प्रभु यही प्रतिपाल हूं सब परिवारों में, एक नाव को लेकर ही पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूं। एक नाव ही तो है जो मेरी जीविका चलाने के लिए, धन कमाने के लिए एक नाव ही है। नहीं जानू कछु और कबाऊ, और दूसरा धंधा तो मैं जानता नहीं हूं। यदि आपकी रज से स्पर्श हो गई या स्त्री बन गई तो दूसरा बिजनेस हमें नहीं आता है, तो धंधा बंद हो जाएगा और दो नारी घर पर रखूंगा, मैं तो मर जाऊंगा प्रभु जी, फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं। केवल यही सोच रहा था कि वहां शीर सागर में मुझे स्पर्श नहीं करने दिया, अब देखो कैसे स्पर्श नहीं करने देते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, तो फिर क्या करे? केवट कहते हैं, जो प्रभु पार अवसी गा चहु मोहि पद पदुम पखार न कहु। प्रभु यदि आपको उस पार जाना है तो एक कार्य करना होगा, मैं आपको आपके चरण को धोकर आपकी धूल को साफ करना चाहता हूं। ठीक से जब मैं आपके चरण को साफ कर दूंगा, सारी धूल निकाल दूंगा, बाद में मैं आपको लेकर जा सकता हूं। इस प्रकार से जब केवट ने कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चही मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कही बरु तीर मारहु लखनु पे जब लागिन पाय पखा रही तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारही। केवट ने यहां तक कह दिया कि यदि आप आपके चरण मुझे नहीं धोने दोगे, यदि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो रहे थे जब ये समाज चल रहा था, अयोध्या के राजा को ये नाव में नहीं बिठा रहा है, लक्ष्मण जी तो अपने धनुष को बाहर निकाल ही रहे थे। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी भले मुझे बाण मार दे, परंतु आपके चरण धोए बिना मैं आपको पार नहीं करवाऊंगा। सुनी केवट के नैन, सुनी केवट के बेन, प्रेम लपेट अटपटे, बियसे करुनाएन चितई जान की लखन तन। केवल इस प्रकार से प्रेम भरे शब्द सुनकर भगवान श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए, अंदर से भगवान प्रसन्न थे। और भगवान श्री रामचंद्र प्रसन्न होकर कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जही तव नाव नाई। कृपा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर भगवान श्री रामचंद्र ने केवट को कहा कि केवट अब तुम्हें जो करना है जल्दी करो, परंतु नाव को उस पार हमें कैसे भी करके पहुंचाओ, तुम्हें जो करना है जल्दी करो। बेगी आनु जल पाय पखारू, हो तो विलंब उतरा ही पारू। यदि आपको चरण ही धोना हो तो जल्दी धोने का सब सामान लेकर आओ और जल्दी चरण धो लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम लेकर, जिसका एक बार भी व्यक्ति नाम ले लेता है तो वो भव सिंधु को पार कर देता है। वह भगवान एक छोटे से गंगा के किनारे को पार करने के लिए केवट से हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हैं। सोई कृपालु के वट ही निहोरा, जेहि जगु किए तीग पगहु ते थोरा। केवट के इस प्रसंग को देखकर भगवान हृदय ही मन ही मन में हर्षने लगे। अब केवट ने क्या किया? जब इस प्रकार से भगवान ने केवट को कहा कि यदि चरण धोना है तो धो लो, तो गंगा जी बहुत प्रसन्न हो गई। गंगा ने सोचा कि जिस भगवान के चरण कमलों से मैं निकली हूं, वही भगवान यहाँ पर आए हैं और वे भगवान उसी गंगा से अब चरण धोने जाएंगे। तो पद नख निरखी देव सरी हरषी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करषी। गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई कि आज प्रभु हम में चरण रखेंगे, प्रभु जी का चरण हमारी गंगा में धोएंगे। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा। केवट तुरंत दौड़कर अपने घर पर गया, नाव को किनारे पर लगाया, दौड़कर अपने घर पर जाकर कठोता लेकर और एक लोटा लेकर आया। भगवान को ठीक से एक पत्थर के ऊपर बिठाया और पत्थर पर बिठाकर केवट के चरण, केवट ने भगवान के चरण को बहुत ही मसल मसल कर धोया। केवट ने जब धो लिया तो केवट ने पत्नी को बुलाया, चलो चलो लाइन में खड़े रहो, आ जाओ आप भी। केवट की पत्नी ने बहुत अच्छी तरह से भगवान के चरण धोए, बच्चों को भी लगाया, चलो धो आज हाथ में आए। और इस प्रकार से केवट भगवान के चरण धोते धोते अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पाखने लागा। अति आनंद हर्षित होकर केवट भगवान श्री रामचंद्र के चरण धोते रहे। तो इस प्रकार से केवट ने चरण धोया, केवट की पत्नी, बच्चों ने, सब ने चरण धोया। यह दृश्य देखकर स्वर्ग में रहने वाले देवता आश्चर्यचकित होने लगे। हम लोग कॉलेज और स्कूल में पढ़ पढ़कर अंधे हो गए। बहुत बड़े ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, लेकिन फिर भी भगवान के चरण को स्पर्श की बात दूर रही, धोने की बात दूर रही, ध्यान में भी नहीं ला सके। और ये अनपढ़ गवार केवट गांव में रहने वाला भगवान के चरण को पकड़कर उनके चरण को धो दिया और आगे चलकर उनका चरणामृत भी पी लेगा। धन्य है केवट, धन्य है भगवान। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी अपने आप को लज्जित मानने लगे। इस संसार में कितना भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, जब भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो वह ज्ञान और वह पढ़ाई किस काम की? किसी भी काम की नहीं। संसार में धनी बन जाओ, ऐश्वर्यशाली बन जाओ, मान हो जाए, पद हो जाए, परंतु भगवान यदि नहीं मिलते हैं तो वे कुछ काम का नहीं। देवता लोग इसी बात को सोच सोच कर मन ही मन में हर्षित हो रहे थे। और इस दृश्य को देखकर देवताओं ने बरसि सुमन सुर सकल सिहाई। देवताओं ने आकाश से फूलों की वृष्टि की, यही राम पुण्य पुंज को नाही। देवता लोग मन में सोचने लगे कि यह केवट के कौन से जन्म के पुण्य का फल होगा जिससे भगवान के डायरेक्ट चरण स्पर्श करने मिले हैं। जाइए भगवान दादा गिरधारी के चरण जो डिटीज है उनके भी स्पर्श करने नहीं मिलेंगे, ये साक्षात भगवान के चरण धोने लगा। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुदित गयोले पार। हरि हरि। बहुत ही सुंदर गोस्वामी जी कहते हैं केवट भगवान श्री रामचंद्र को गंगा के इस पार से उस पार पहुंचाने से पहले केवट अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को भवसागर के पार करवा दिया। भगवान गंगा के उस पार पहुंचे उसके पहले तो अपने परिवार सहित स्वयं भवसागर को पार हो गया और उतरी। इस प्रकार से केवट ने भगवान श्री रामचंद्र को नाव में बिठा दिया। भगवान ने कहा अब तो ठीक है, ठीक है, लेकिन दो मिनट खड़े रहिए आप। केवट ने जो साइड में गया और जो कठौती में जो चरणामृत था, भगवान के चरण की रज का अमृत, वे खुद स्वयं पिया, पत्नी को पिलाया, पुत्रों को पिलाया, पिया और छिड़का, अभिषेक किया, सब जो हो सकता है सब कुछ कर लिया। फिर भगवान को कहा अब ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप नाव में बैठिए, मैं नाव निकाल रहा हूं। केवट भगवान श्री रामचंद्र, लखनलाल और सीता जी को नाव में बिठाया और नाव में बिठाकर इस पार से उस पार लेकर गया। परंतु उसमें भी केवट ने एक लीला की। केवट तुरंत, अब गंगा नदी का धारा बहुत पतला था, केवट तुरंत डायरेक्ट उस पार लेकर जा सकता था, परंतु केवट कभी इधर कभी उधर गोल गोल बीच में ही चक्कर घुमा रहा था। भगवान के रूप को देख देखकर बीच में ही गोल गोल घुमा रहा था। लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोधित हो रहे थे, यदि प्रभु की आज्ञा हो तो तुरंत इसको कुछ कह दो, परंतु भगवान ने लक्ष्मण जी को शांत रखा था। जब बहुत चक्कर घुमाए तब भगवान ने केवट को कहा, केवट क्यों चक्कर घुमा रहे हो, पार लगाओ। भगवान ने जब केवट को कहा कि क्यों घुमा रहे हो, इधर पार लगाओ, तब केवट ने इतना ही कहा कि प्रभु यह जीव हजारों हजारों जन्म से 84 लाख की योनि का चक्कर काटते आया है, फिर भी ये बेचारा चक्कर काट रहा है और आप एक ही चक्कर में थक गए। भगवान के भक्त भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, आप एक चक्कर में थक गए, इतने इतने जन्म बदल दिए, इतने इतने जन्म आपने दे दिए, कभी गाय कभी बैल गधा कुत्ता, लेकिन फिर भी आपको कहा कि हम थक गए हैं। तो प्रभु मैं यही बताना चाहता हूँ, हम लोग बहुत थके हुए हैं, आप एक चक्कर में थक गए, हम इतने इतने जन्म बदले हैं, अब मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी पार लगा दीजिए। इस प्रकार से केवट ने लीला की और फिर केवट भगवान की आज्ञा से गंगा के उस पार पहुंचा दिया। उतरी ठाड़ भये सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और सीता जी गंगा जी के उस तट पर जहां पर रहती थी वहां पर खड़े रहे। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीन्हा। केवट भी उस नाव से उतरा और भगवान श्री रामचंद्र को अष्टांग प्रणाम किया। जब केवट ने प्रणाम किया तो भगवान मन ही मन में संकोच कर रहे थे कि केवट ने हमें नदी पार करवाया है तो इसे कुछ देना चाहिए, परंतु प्रभु के पास कुछ था ही नहीं। तापस वेश, तपस्वियों के वेश में भगवान निकले थे, जेब में एक नया लेकर भी नहीं निकले थे कुछ। तो भगवान मन ही मन में संकोच कर रहे थे, क्या करूं, केवट ने इतना कुछ पार करवाया है, इसे कुछ देना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र इस संसार में जगत के लोगों को उपदेश देने के लिए आए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी करता है तो उसे उसकी उतराई या उसे उसके बदले में कुछ देना चाहिए, किसी से मुफ्त में काम नहीं करवाना चाहिए, भगवान ये उपदेश देना चाहते हैं। इस संसार में समस्त सभी प्राय लोगों का यही भाव है कि कैसे करके किसी से मुफ्त में काम निकाल लो, सबका यह विचार होता है और अपने आप को बड़े मानते हैं कि उससे आज रिक्शा वाला मेरे से पैसा लेना भूल गया, या सब्जी लेने जाते हैं बेचारे शायद भूल गए तो ये भूल गए लेना, तो खुश होते हैं। नहीं, भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कभी भी किसी का भी ऋण हमारे सिर पर नहीं होना चाहिए। कितना भी बड़ी भक्ति कीजिए, अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, परंतु किसी से व्यर्थ ही किसी से कुछ दिए बिना अपनी सेवा करवाई तो वे कभी भी भगवत धाम का अधिकारी नहीं हो सकता है। किसी का एक पैसे का ऋण सिर पर रखकर कोई भगवान के धाम में नहीं जा सकता है, यद्यपि भक्ति पूर्ण भी किया जाए, ऋण कभी नहीं होना चाहिए, ऋणी नहीं बनना चाहिए। भजन न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु जीवन में किसी का ऋण मत चढ़ाना, क्योंकि ये ऋण जो है इसे उतारना बहुत मुश्किल है। इसी जन्म में ये ऋण का जो हिसाब किताब है ये बहुत अद्भुत है, इसे जानना चाहिए। यदि किसी का एक पैसे का ऋण भी चढ़ गया तो प्रति सेकंड चक्रवर्ती व्याज की तरफ बढ़ते रहता है। किसी ने एक रुपया हमें दिया तो फिर दो साल के बाद उसे हम एक रुपया देंगे तो वो ऋण कंप्लीट नहीं हुआ, उसी वक्त उसे देना चाहिए। यदि समय निकल गया तो वह करोड़ों रुपया, एक पैसे का करोड़ों रुपये चुकाने पड़ते हैं, ऋण बढ़ते रहता है प्रति सेकंड। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए किसी का ऋण न चढ़ाए। भगवान स्वयं, भगवान को क्या जरूरत है केवट को देने की, लेकिन भगवान भी यह लीला से बताते हैं कि किसी का ऋण न चढ़ाइए। कुछ लोग भक्तों में भी देखा गया है, व्यर्थ ही किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए किसी की सेवा न ले। यदि ले ली तो जीवन का बहुत बड़ा लॉस है हमारा। बाहरी दृष्टि से लगता है कि हमें बहुत फायदा हुआ है, इसने फ्री में मेरी सेवा कर दी, ये फ्री में ये कर दिया, बाहरी दृष्टि से लगता है, लेकिन परंतु अंदर का जो हिसाब किताब है ये बहुत ही कड़ा है, इससे कोई नहीं छूट सकता है। इसलिए कभी भी किसी से लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन हमारे दिमाग में लेने की भावना आ गई, उस दिन भक्ति, भजन और शास्त्र इससे कोसों दूर हो जाएंगे हम। भक्ति कभी समझ में नहीं आएगी, शास्त्र 2400 घंटा भी यदि पढ़ते रहे, किसी से यदि लेने की भावना आ गई, शास्त्र नहीं समझ पाएंगे। गुरु है, शास्त्र है, भगवान है, सब कुछ है, लेकिन जब तक किसी से लेने की भावना है वो व्यक्ति ठीक से शास्त्र को भी नहीं समझ सकता। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि किसी से भी किसी का ऋण अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए, ऋण से तुरंत मुक्त होना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र मन ही मन में संकोच कर रहे थे कि केवट ने मेरी सेवा की है तो इसके ऋण से मुक्त होना चाहिए, परंतु मेरे लिए कुछ नहीं है। तो उसी वक्त भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता, प्रिय हीय की सिय जान निहारी, मुनि मुदरी मन मुदित उतारी। देखिए एक पत्नी का स्वभाव कैसा होना चाहिए रामायण सिखाती है। पति का स्वभाव तो सीख लिए, किसी की लेने की भावना नहीं, परंतु पत्नी का स्वभाव, पत्नी कैसे, कैसी पत्नी होती है, ये यदि सीखना है तो रामायण से सीखिए, नहीं कि दुनिया की औरतों से। रामायण सिखाती है, श्रीमती सीता जी हमें सिखाती है कि किस प्रकार से पत्नी की सेवा करनी चाहिए। भगवान मन ही मन में विचलित थे कि केवट को मैं क्या दू क्या दू। सीता जी अपने पति रामचंद्र की बात को समझ गई कि हमारे पति प्रभु केवट को कुछ देना चाहते हैं, परंतु उसके पास कुछ है नहीं। और सीता जी जब निकल रही थी वनवास में, तो सीता जी भी तपस्वियों के वेश में निकलने लगे, परंतु उस वक्त वशिष्ठ जी ने कहा कि वनवास केवल राम को मिला है, सीता को नहीं मिला है, इसलिए सीता राजघराने के वेश में जाएगी, वे सभी अलंकार और सभी गहने को पहन के जाएगी। सीता जी ने कई अंगूठी और कई गहने पहने थे, तो सीता ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र की कुछ केवट को देने की इच्छा है। तो देखिए केवट को पता न चले, लखन लाल को भी पता न चले, दुनिया को पता न चले, वैसे सीता जी ने अपनी अंगूठी निकालकर पीछे से भगवान श्री रामचंद्र के हाथ में पकड़ा दी। ये स्त्री, ये पत्नी का स्वभाव होना चाहिए। संसार में हम देखते हैं पति से ही धन लेकर पत्नी एकत्रित करती है, और कभी पति मांगता है फिर भी नहीं देती है। पति की बात को समझकर बिना मांगे हुए देना ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पति कभी मांग भी दे ये धन की बात नहीं है। पति कभी पत्नी से धन नहीं मांगता है, पत्नी से पति की यही इच्छा होती है कि कुछ सेवा करे भक्तों की और साधुओं की। तो एक पत्नी को चाहिए कि पति की इच्छा है साधु संतों की सेवा हो, तो पत्नी को वह कार्य पति के बोलने से पहले कर देना चाहिए। परंतु इस संसार में ऐसी पत्नी मिलना बहुत मुश्किल है। पति की इच्छा है कि भक्ति में लगे, हमारा परिवार भजन करे, तो पत्नी को पति की इच्छा को देकर, इच्छा को देकर भजन में लग जाना चाहिए, बच्चों को भजन में लगाना चाहिए और मंदिरों में आना चाहिए। परंतु यहां पर पति के मन की इच्छा की तो बात दूर रही, पति बोल बोलकर मर जाते हैं, मनाते हैं, और न जाने भक्ति करने के लिए कितने कितनी घूस भी देते हैं कि मैं यहां लेकर जाऊंगा वहां जाऊंगा, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है उस पत्नी का जिसके पति भक्त होने के बाद भी वे पत्नी स्वयं भजन नहीं कर सकती। आप जानते नहीं हो इस संसार की कई कई स्त्रियां भक्त पति को प्राप्त करने के लिए मर रही है, और जिस पत्नी को भक्त पति प्राप्त हुए हैं उसे कुछ वैल्यू ही नहीं है कि हमारे पति भक्त हैं, और इस प्रकार से कई नसीब के कारण हमें यह मिले हैं। नहीं, बस वही संसार के लोगों की तरह खाने की कमी है, पहनने की कमी है, ये दुख है, वो दुख है, इसका कुछ नहीं, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान ने इतनी इतनी स्त्रियों पर कृपा की और भक्त पति दिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अभी हमारी कथा चल रही है श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंध में कर्दम और देवहूति की कथा है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु और शत्रुपा जो इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे, और उसकी पुत्री हुई देवहूति। देवहूति इस संसार के इस पृथ्वी के राजा की पुत्री थी, परंतु उसके मन में एक ही इच्छा थी, विवाह करोगी तो भक्त पति के साथ, फिर वो कैसा भी क्यों न हो, दिखने में कैसा भी क्यों न हो, कितना गरीब भी क्यों न हो। और अंत में वह राजा की लड़की ने एक झोपड़ी में रहने वाले कर्दम ऋषि से विवाह किया। ये लोग जानते हैं कि भक्त पति की क्या वैल्यू होती है, क्या कीमत होती है, लेकिन इस संसार की दुर्भाग्यशाली स्त्रियां नहीं जानती हैं कि भक्त पति का अर्थ क्या है। हजारों हजारों जन्मों में करोड़ों करोड़ों पुण्य किया जाए तब किसी स्त्री को भक्त पति मिलते हैं, और ठीक पति को भी हजारों हजारों जन्म पति जब जतन करते हैं तब जाकर भक्त पत्नी मिलती है। और भक्त मिलने के बाद भी यदि भजन नहीं होता है, भगवान ने इतनी कृपा करके भक्त पत्नी दी, इतनी कृपा करके भक्त पति दिया, फिर भी भजन नहीं करते तो अब भगवान क्या करे। स्वयं माला लेकर आपके हाथ में पहनाने के लिए आए कि अब करो, कहां तक भगवान साथ दे। पूरा धन दे दिया, गाड़ी बंगला सब कुछ दे दिया, भक्त पति भी दे दिया सब कुछ, और फिर भी यदि भजन नहीं होता है तो भगवान को मत दोष दीजिए, दोष हम में है, स्वयं हम में। जो भी कमी है हमारी ओर से है, भगवान की, साधु की और गुरु की ओर से कोई कमी नहीं है। भगवान ने और साधुओं ने सब कुछ दे दिया है, और अब भी इस ऐसे जन्म को प्राप्त करके भी यदि भजन नहीं कर पाए तो फिर बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं मेरे पास, तो फिर उसकी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं। इसलिए चाहिए सीता रानी यहां पर अपने आचरण से उपदेश दे रही है कि अपने पति के मन की बात की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, यह है नंबर वन। यदि पतिव्रता स्त्री किसे कहा जाता है तो वो के अपने पति की बात को देखकर वे उसकी आज्ञा का पालन करे। पत्नी के लिए बस यही व्रत है कि अपने पति की सेवा करे। पत्नी यदि पति की सेवा करती है, भले भक्ति न करे, कुछ न करे, केवल यदि पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो वे भगवत धाम में आराम से पहुंच जाएगी, निश्चित रूप से। फिर उसका पति शराबी क्यों न हो, मांस भी क्यों न खाता हो, शास्त्र में पत्नी के लिए यही विधान दिया गया है कि अपनी पति की सेवा करे, पति कैसा भी क्यों न हो, और उसमें भी भक्त पति यदि मिल जाए तब तो। लेकिन फिर भी ये बुद्धि नहीं है, नहीं जान सकते। सीता जी अपने आचरण से दिखाई कि किस प्रकार से एक पत्नी को रहना चाहिए। पीछे से अंगूठी निकालकर भगवान श्री रामचंद्र को दी, भगवान श्री रामचंद्र उस अंगूठी को लेकर केवट के हाथ में दिए, केवट केवट ये लो तुम्हारी उतराई। केवट तो दोनों हाथ जोड़कर गदगद हो गया, आंखों से अश्रु निकलने लगा, प्रभु ये आप क्या दे रहे हो। अब देखिए केवट ने जो काम किया था उस समय में शायद एक दो आने का काम किया था, गंगा के इस पार से उस पार पहुंचाने का, परंतु सीता जी ने उसके बदले में सोने की अंगूठी दे दी और भगवान श्री रामचंद्र दिए। परंतु आज की स्त्रियों का स्वभाव क्या है, पति यदि किसी को 2 रुपया ज्यादा दे देते हैं तो कहती हैं क्यों ज्यादा दे रहे हो, हमें तो धन देते नहीं हो, हमें तो पैसा देते नहीं हो, और दुनिया में उड़ाते रहते हो, लुटाते रहते हो। ये पत्नी का स्वभाव नहीं है। सीता जी सिखा रही है कि यदि कोई दो आने का काम करता है तो उसे हजारों गुना दिया जाता है, सोने की अंगूठी ही दे दी। और भगवान श्री रामचंद्र जब केवट को दिए देना चाहे तो केवट हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये आप क्या दे रहे हो, हे नाथ आपने सब कुछ दे दिया, आपका दर्शन करके आपका चरण धो लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, अभी अंगूठी फंगूठी नहीं चाहिए। केवट ने बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं, नाथ याज में काहू न पावा, नाथ याज में काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, नाथ याज में पावा, मिटे दोष दुख। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दिन बीते बनी भली भूरी। केवट ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे नाथ आज मैं काहू न पावा, हे भगवान हे प्रभु आज मैंने क्या प्राप्त नहीं किया है, अरे मेरे सारे दरिद्रता का, मेरे जीवन में जो दोष था जो पाप था ये सब जलकर भस्म हो गया है, अब मुझे क्या चाहिए, मेरे सभी दुख मिट गए प्रभु आपका दर्शन करके। प्रभु वैसे तो मैं बहुत सालों से बहुत कालों से मजूरी करता आया हूँ, बहुत जन्म जन्मांतर से मेहनत करता आया हूँ, परंतु हजारों जन्म की मेहनत का फल प्रभु आपने इस जन्म में मुझे दे दिया, आज दिन विधि बनी भेली पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ अब क्या चाहिए, आपने सब कुछ दे दिया, यदि आपको देना ही है। फिरती बार मोही जो कछु देवा, सो प्रसाद में शिर धर लेवा। भगवान के भक्त इतने चतुर होते हैं, हे प्रभु यदि आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप जिस काम के लिए जा रहे हो चले जाओ, जब वापस लौटोगे तब मुझे ये सब देना है। तो केवट ने यह भी फिक्स करवा लिया कि 14 साल के बाद दूसरी बार भी दर्शन देना है आपको। फिर ती बार मोही जो कछ देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। जब आप वापस आओगे तो आपको जो देना है मुझे देना, मैं जरूर ग्रहण करूंगा। और भगवान श्री रामचंद्र ने केवट के वचन को रखकर भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करके अपनी भारिया सीता को लेकर पुष्पक विमान में आ रहे थे, तब आचार्य गण कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र अपने विमान को गंगा के इस पार रखे, इस पर रखे। भगवान श्री रामचंद्र वहां से उतर गए, केवट की नाव में बैठे, केवट की नाव से उस पार हुए, फिर विमान में चढ़कर बाद में अयोध्यापुरी में गए। केवट को दूसरी बार भगवान श्री रामचंद्र ने दर्शन दिया। तो इस प्रकार बहुत कीन प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले, बिदा कीन करुणायतन भगति विमल बरुदे। इस प्रकार से केवट ने भगवान श्री रामचंद्र के साथ लीला की, और यह लीला करके केवट ने भगवान श्री रामचंद्र को विदाई दी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र की लीला है, भगवान के भक्त की लीला है। इसी भाव में इसी भक्ति में हमें भगवान का भजन करना चाहिए, यह जीवन व्यर्थ ही नहीं गवाना चाहिए। भगवान का नाम लेते हुए यह जीवन बीत जाए, यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इसलिए एक भक्त बहुत ही सुंदर गाते हैं, राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खान तो यंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जा। चाहे राम कहो घनश्याम कहो, बोलो सीता राम रे, बीत रही है उमरिया। चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बोलो सीता राम रे। चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बोलो सीता राम रे, बीत रही है उमरिया। चाहे बोलो सीता राम रे, कदम कदम पर पाप यने को तूने नीच कमायो, कदम कदम पर कदम कदम पर पाप यने को तूने नीच कमायो, कदम कदम कभी न सत्संगों में आकर तूने हरि गुण गायो, कभी न सत्संग कभी न सत्संगों में आकर तूने हरि गुण गायो, कभी न गायो हो प्यारे तूने हरि गुण गायो हो प्यारे। चाहे राम कहो घन श्याम कहो, बोलो सीता राम रे, बीत रही है उमरिया। चाहे बोलो सीता राम रे, हाँ बीत रही है उमरिया, बीत चेत। अरे माटी के पुतले नश्वर है तेरी काया, चेत अरे मा चेत अरे माटी के पुतले नश्वर है तेरी काया, चेत अरे मा चार दिनों की जिंदगानी में तू काहे भर माया, चार दिन चार दिनों की जिंदगानी में तू काहे भर माया, माया हो प्यारे तू काहे भर माया हो प्यारे। माटे राम कहो घन श्याम कहो, बोलो सीता राम रे, बीत रही है उमरिया।
बीत रही है उमरिया। हाथी घोड़ा माल खजाना कोई न संग में आएगा। हाथी घोड़ा माल खजाना कोई न संग में आएगा। कोई न संग में आएगा। चाहे राम कहो घन श्याम कहो बोलो सीता राम रे बीत रही है उमरिया। चाहे बोलो सीता राम रे बीत रही है उमरिया। हे आँखों टूके ऊ फोटू करऊ आँखों टूके ऊ फोटू करऊ जीवन या तू खोटारू। अरे अणहम जन नाय अंधारामा क्या पिताय हवे अजवाणो। प्रभु ने पड़तो मेली प्रभु ने पत्नी नू जो ने हरण करे एवा आज घरो घर रावण जोई। प्रभु ना तो नयन जरे रे भाई प्रभु ना नयन जरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। राजा राम पतित पावन सीता राम। हाँ राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। जय जय प्रभुपाद 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 जय
श्री रामचंद्र भगवान की पिताए गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर कृष्ण कथा राम कथा सुनने के लिए आए। ग्रस्त जीवन अगले शुक्रवार से प्रारंभ करेंगे। यही एक ग्रस्त जीवन का यह भी एक पाठ है। जैसे हम ग्रस्त जीवन की कथा सुन रहे थे यह एक ग्रस्त की ही कथा है। तो आज कोई तैयारी नहीं थी, हमारी कथा चल रही है बालकेश्वर में, तो वहां से आया तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रवचन था। यही सोच रहा था कौन सा क्या प्रवचन करूं क्या करूं, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, हमने इतना सोचा नहीं था इस प्रवचन के बारे में। परंतु आप सबका आशीर्वाद आप सबकी कृपा से कुछ शब्द यहाँ पर बोल पाया। कुछ त्रुटियां रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है। समाप्त करने से पहले एक बात से आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। यहां पर करीबन भगवान के द्वारा भगवान चला रहे हैं। कितना साल, कितने साल से कार्यक्रम हो रहा है? 5-7 करीबन 5 साल से कार्यक्रम हो रहा है। और इन कार्यक्रम में कई लोग आते हैं, कई लोग बिछड़ जाते हैं। परंतु दुख तब होता है जब कई दिनों तक कोई भक्त हमारे साथ रहते हैं और बाद में बिछड़ना होता है, तो वास्तव में बहुत दुख होता है। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामन उनको पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो राय रामन ने यही उत्तर दिया कि कृष्ण के भक्त से वियोग होना, भक्त से वियोग होना इस जीवन का सबसे बड़ा दुख। तो हमारे साथ करीबन 2-3 सालों से एक भक्त यहाँ पर है, ज्योति माता जी, पराग प्रभु की बहन है। तो ज्योति माता जी का विवाह होने जा रहा है। अभी संसार का नियम ब्रह्मा जी ने कैसा बनाया है कि संसार में सबसे ज्यादा त्याग केवल स्त्री को ही करना पड़ता है। जिस माता पिता भाई बहन जिसके साथ आधा जीवन निकाला है, उसे बिल्कुल छोड़कर एक नए परिवार में जाना होता है। दुख तो होता है, परंतु ब्रह्मा जी के द्वारा ही यह नियम बनाया गया है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ज्योति माता जी जो बहुत ही अच्छी प्रकार से भक्ति करती है, बहुत टाइम से आना, टाइम से जाना, 16 माला जप करना, 4 नियम का पालन करना, हमें भी बहुत उत्साह दिया है भक्ति में, और वो भी बहुत उत्साहित होकर भक्ति में लगी है। तो उनका विवाह इसी महीने में कुछ दिन के बाद है राजकोट में। तो ये उनका आखिरी प्रोग्राम है। हम आशा करते हैं कि वे बार बार यहाँ पर आएंगे, हम भी वहां जाएंगे तो उसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो नित्य साथ था वह छूट रहा है। तो हम सब भक्त श्री राधा गिरधारी जी से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, गौर नेता से प्रार्थना करते हैं कि ये जहां भी जाए, जहां भी रहे, भगवान उनके चरणों में सभी खुशी डाले और सभी ओर से भगवान का भजन करें, और इसी जन्म में भगवान की भक्ति करके जैसे केवट अपने पूरे परिवार को लेकर चला गया, ऐसे अपने पूरे परिवार को, परिवार सहित भगवान के धाम को प्राप्त हो। तो हम सब भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से इसे आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और हमारी इच्छा हो रही है कि आप 2 शब्द यहाँ पर माइक में बोले, अपना अनुभव जो भी है।
सबसे पहले जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, तभी मुझे लाल बहन प्रभु जी फर्स्ट टाइम लिफ्ट में मिले थे। फर्स्ट टाइम मैंने प्रभु जी को लिफ्ट में देखा था। मैंने सोचा ये प्रभु जी क्या प्रवचन देंगे। ये मेरा, मैंने बहुत प्रवचन सुने, बहुत जगह भागवत कथा सुनी, पर कहीं पर मुझे जो आनंद मिलता था वो कहीं पर नहीं मिला। यहाँ पर आती थी एकदम ऑफिस से थक के, तभी मैंने लाल बहन प्रभु के मुखारविंद से फर्स्ट टाइम ये प्रवचन सुना, कृष्ण प्रति प्रेम प्रीति कैसे उत्पन्न करनी चाहिए सुना। तभी लाल बहन प्रभु जी, शायद मुझे बहुत बार देखते, मैं यहाँ पर आकर सो भी जाती थी, तो लाल बहन प्रभु जी की एक बात मैंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह उतारी है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ पर आके भले निंदर करता हो, पर एक कदम उसने कृष्ण के तरफ बढ़ाया है तो कृष्ण उसको उसको अपनी गोदी में बिठा देता है। बस यही बात मैंने अपने जीवन में उतर, मेरे को भले मुझे नींद आ गई, पर आज जब प्रवचन सुनने का नाम होता है तो नींद भी नहीं आती है कि कथा ही सुनूं, कथा ही सुनूं। और मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा लाल गोविंद प्रभु जैसे गुरु मिले, वही बस मेरा जीवन धन्य हो गया।